हरे कृष्णा। महाभारत में श्री कृष्ण इस चार दिवसीय कथा में आज अंतिम दिवस है। कल चर्चा यहां रुकी थी कि अर्जुन जब 12 वर्ष के वनवास में गए थे इंद्रप्रस्थ को छोड़कर, जगह जगह घूमने के बाद वो द्वारका आ पहुंचे थे। द्वारका में सुभद्रा देवी के साथ विवाह हुआ। युधिष्ठिर महाराज की अनुमति से, श्री कृष्ण की योजना से और वसुदेव देव की आदि सबके आशीर्वाद से, और फिर लौट के आए अर्जुन सुभद्रा देवी को साथ में लेकर। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी देवी प्रसन्न नहीं थी शुरुआत में, फिर बाद में अर्जुन ने युक्ति से मना लिया द्रौपदी देवी को। सुभद्रा देवी ने एक गोपी का वेश धारण किया और द्रौपदी देवी की एक दासी के रूप में सामने आई। जैसे ही गोपी वस्त्र में देखा उन्होंने एक नए दासी को, वो जानती नहीं थी कि यही है सुभद्रा, तो वृंदावन का स्मरण हुआ, श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भाव विभोर होकर उन्होंने आशीर्वाद दिए उस महिला को, और जब जाना कि यही सुभद्रा है तो आलिंगन किया, और इसके बाद में सुभद्रा देवी और द्रौपदी देवी के बीच में बहुत प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। उधर जब अर्जुन और सुभद्रा देवी द्वारका से निकले थे तो 12 वर्ष अभी तक पूर्ण नहीं हुए थे, तो थोड़े समय के लिए द्वारका छोड़कर अर्जुन और सुभद्रा पुष्कर में रहे और वहां से अंततः इंद्रप्रस्थ में चले आए। उस समय द्वारका से श्री कृष्ण, श्री बलराम और उनके साथ में उद्धव, अक्रूर जी, सात्यकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि सब चले आए इंद्रप्रस्थ में और बहुत सारा धन आदि लेकर आए। और इस धन का वर्णन हम पूरी तरह से नहीं करेंगे जैसे कि व्यासदेव जी करते हैं, क्योंकि हम बेहोश हो जाएंगे, और केवल संक्षिप्त में इतना ही बताएंगे कि उन्होंने सोने के पहाड़ ले आए वो, साथ साथ में हजारों गाय, हजारों रथ जिनके बहुत अच्छे दूध के रंग के घोड़े थे, साथ साथ में ऐसे भी सारथी थे जो बहुत प्रवीण थे रथ चलाने में, और ऐसे बहुत सारा धन श्री कृष्ण लेकर आए द्वारका में इंद्रप्रस्थ में। बलराम जी भी इतना ही धन लेकर आए, साथ साथ अनेक हाथी ले आए और जो सुशोभित थे तरह तरह के रत्नों से, तो इतना धन था कि ये सारा धन उन्होंने वहां राजमहल के सामने इकट्ठा कर दिया और सारी प्रजा देखती थी। तो ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन जिसकी कल्पना भी हम इस कलयुग में नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि कागज के नोट होते हैं और जिसमें आजकल पैसे प्लास्टिक का भी धन होता है, या ऐसे धन होता है जो है ही नहीं, बस बैंक से कोई एक कागज मिलता है कि आपके पास इतने हैं, हाथ में कुछ है नहीं। तो खैर ऐसे इतना धन हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने अच्छी तरह से इसे स्वीकार कर लिया और फिर वहां पे थोड़े समय रहकर बलराम और अन्य यदुवंशी द्वारका वापस चले गए, परंतु श्री कृष्ण वहीं पर रहे इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि वो पांडवों का संग चाहते थे, विशेष करके अर्जुन का संग चाहते थे और द्रौपदी देवी के साथ भी बहुत प्रेम का संबंध था। द्रौपदी देवी तो एक शुद्ध वैष्णवी थी, साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ये भी देखना चाहते थे कि कहीं सुभद्रा देवी और अर्जुन के विवाह में कोई समस्या नहीं आए। वैसे तो द्रौपदी देवी और सुभद्रा देवी के बीच में संबंध तो बहुत अच्छा हो चुका था, फिर भी एक स्नेह था तीनों के प्रति, इसलिए श्री कृष्ण वहां पर रह गए। ऐसे समय बीत गया और इंद्रप्रस्थ के पास में यमुना नदी थी और यमुना नदी के पास जाकर अर्जुन और श्री कृष्ण रमण किया करते थे। अनेक ऐसे भवनों का निर्माण किया था युधिष्ठिर महाराज ने, जो पांचों भाइयों के भोग के लिए था। तरह तरह के सुविधाएं, भोग आदि वहां पर उपलब्ध थे। तो वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में जाया करते थे। अब समय बीतता गया और हुआ ये कि सुभद्रा देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और इस पुत्र का नाम तो आप सब जानते हैं, अभिमन्यु। अभिमन्यु शब्द का अर्थ है कि जिनका क्रोध असीमित है, जिनको बहुत क्रोध है, जो बहुत शूरवीर भी है और क्रोधी है युद्ध में। क्षत्रिय ऐसे होते, बहुत क्रोधी होते हैं कभी कभी। तो अभिमन्यु का जन्म हुआ। अब श्री कृष्ण तो मामा थे और श्री कृष्ण को पता था कि उनके मामा ने उनके साथ कैसे व्यवहार किया था। श्री कृष्ण के मामा का नाम था कंस। बच्चा चाहता है कि मेरे मामा जो है मुझसे प्रेम करे, कुछ खिलाए पिलाए, कुछ करे, लेकिन कृष्ण के मामा जी ने तो ऐसे कुछ किया नहीं। बल्कि प्रतिदिन जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बल्कि उसके पहले से भी कंस ने बहुत सारे अत्याचार किए। एक के बाद एक प्रतिदिन असुर भेजते गए व्रज में, लेकिन कृष्ण ने उनका संहार कर दिया। अंततः श्री कृष्ण बाध्य हो गए कंस का वध करने के लिए। तो श्री कृष्ण को पता था कि भांजे को मामा के प्रेम की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ बीती है वो अभिमन्यु के साथ नहीं बीतनी चाहिए। तो व्यास देव जी महाभारत में ऐसे एक दो श्लोकों में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया अभिमन्यु को, जिस समय के वो इंद्रप्रस्थ में थे। व्यासदेव जी कहते हैं, दयितो वासुदेवस्य बाल्यात् प्रभृति चाभवत् जन्म प्रभृति कृष्णश्च चक्रे तस्य क्रियः शुभाः। जन्म से लेकर आगे बाल्यावस्था तक जितने भी संस्कार आदि थे, आप तो जानते हैं कि दशविध संस्कार होते हैं, महत्वपूर्ण संस्कार। छोटे छोटे संस्कार तो और बहुत होते हैं, महत्वपूर्ण संस्कार 10 होते हैं। तो जन्म के बाद जितने भी होने थे संस्कार, वो श्री कृष्ण ने स्वयं वहां रह के कराए। साथ साथ में जो भी बच्चे के देखभाल करने में सहन करना पड़ता है या सेवा करनी पड़ती है, वो सब भी श्री कृष्ण ने किया। अब आप सबको पता है कि बच्चा कुछ भी कर लेता है, उसको ना शुचि का कोई ख्याल रहता है ना कुछ। तो श्री कृष्ण ने बालक इस शिशु अभिमन्यु का इस तरह से देखभाल किया और बड़े प्रेम से किया, बड़े आनंद से किया। इस तरह से देखभाल किया कि अभिमन्यु को पूरा स्नेह श्री कृष्ण का मिला। और ऐसे समय बीतता गया और आगे चल के वर्णन करते हैं व्यासदेव जी कि अभिमन्यु बहुत शूरवीर बने अपने पिता अर्जुन की तरह है। अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत प्रवीण हो गए, रथ चलाने के तौर तरीकों में बहुत प्रवीण हो गए। रथ को कैसे घुमाना चाहिए, कैसे अचानक रोकना चाहिए, जो भी कलाएं क्षत्रियों को आवश्यक होती हैं वो सब सीख गए। और क्योंकि श्री कृष्ण के कृपा दृष्टि में अभिमन्यु बड़े होते जा रहे थे, इसलिए व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि वो बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह ही दिख रहे थे। कृष्णस्य सदृशं शौर्ये वीर्ये रूपे तथा कृतौ ददर्शं पुत्रं बीभत्सु मघवान इवतम तथा। कृष्णस्य सदृशं, श्री कृष्ण के भांति ही शौर्य उनकी शूरता, वीर्य उनका वो वीर थे, रूप तथा कृतौ उनके कार्य, उनका रूप, उनकी शूर वीरता, वो सब बिल्कुल श्री कृष्ण के समान ही थी। यहां तक कि दिखने में भी वो कृष्ण की तरह दिखते थे। और ये सब देखते हुए अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। जिस प्रकार से मघवान अर्थात इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को देखकर प्रसन्न होते, तो अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को बड़े होते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए। विशेष करके ये देखकर कि अभिमन्यु अब श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में चल रहे हैं और श्री कृष्ण की कितनी कृपा अभिमन्यु को प्राप्त हुई है। तो ऐसे समय बीतता गया। फिर हुआ ये कि एक बार जब अर्जुन श्री कृष्ण को साथ में लेकर यमुना के तट में थे, खांडव प्रस्थ में रमण कर रहे थे, इधर उधर एक भवन में बैठे थे, फिर जाके वन के पास में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अब इतने भोग की सुविधा वहां थी कि शायद महाभारत पढ़ने वाले को आश्चर्य हो जाए कि इतना भोग, इतनी सुविधाएं, ऐसे क्यों, क्षत्रियों को इतनी भोग की सुविधा क्यों प्रदान की जाती थी। क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो रजगुण में होते हैं, उनके लिए ये आवश्यक होता है। और दूसरी बात है कि उनका कर्तव्य होता है न केवल भोग करना, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, माया से रक्षा करना, और साथ साथ में कोई आक्रमण करे तो ऐसे प्रहार से, ऐसे आक्रमण से रक्षा कराना। तो जब आवश्यकता पड़ती थी तो क्षत्रिय भी तत्पर रहते थे युद्ध करने के लिए, पीछे नहीं हटते थे। ऐसा नहीं कि केवल भोग करें, जो युद्ध का समय आए जो पीछे रह जाए, अपने सैनिकों को आगे भेजें, ऐसे नहीं। जब युद्ध का समय आता था तो स्वयं सेना के आगे होकर सेनापति बन के चलते थे। तो ऐसे ही होना था थोड़ी देर में। तो जब बैठे थे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में, पुरानी बातों की यादें कर रहे थे, कैसे हमने इस युद्ध में युद्ध लड़ाई की थी और उस घटना वहां कैसे हुई थी। तो ऐसे बातें करते करते अचानक उनके बीच में एक ब्राह्मण चले आए, बड़े तेजस्वी दिख रहे थे, पिघले हुए सोने के समान उनकी शरीर की कांति थी। यहां तक कि उनके जो बाल थे, उनकी जो दाढ़ी थी वो भी पीले रंग की थी, उनकी आंख कमलों के समान खिले हुए थे। और वैसे ही आए कृष्ण और अर्जुन सोचने लगे कि ये तेजस्वी ब्राह्मण भला कौन हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं और मैं पीड़ित हूं, इसलिए आपके पास सहायता के लिए आया हूं। अब अर्जुन सोच लगे अग्निदेव हमारे पास आए सहायता मांगने के लिए। तो फिर अग्निदेव कहने लगे कि वास्तव में मैं इस वन को जलाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा अन्न है। क्यों अन्न है, इतिहास बताने लगे कि एक राजा थे जिनका नाम था श्वेतकेतु। उन्होंने एक बार विशाल यज्ञ संपन्न किया था, उस यज्ञ में इतने घी की आहुति प्रदान की गई थी, तो अग्निदेव ने इतना घी ग्रहण कर लिया था कि अब उनका पेट बिगड़ गया था, तबीयत खराब हो गई थी। और तबीयत खराब होने के कारण उनको कोई औषधि चाहिए थी, कोई वनस्पति, औषधि वनस्पति चाहिए थी जो कि यह खांडव वन में उपलब्ध थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तबीयत ठीक करनी है तो तुम्हें खांडव वन में जाना चाहिए, वहां ऐसे अनेक औषधियां हैं जो कि आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे। तो अब अग्निदेव कैसे ग्रहण करते हैं, जलाकर ही तो ग्रहण करते हैं। हम लोग किसी औषधि को ग्रहण करते हैं, कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह के द्वारा खा के चबा के चूस के आदि हम ग्रहण करते हैं, परंतु अग्निदेव जब ग्रहण करते हैं तो जलाकर ही ग्रहण करते हैं। तो अग्निदेव की बीमारी यदि ठीक होनी थी तो उनको ये खांडवन जलाना था। तो अग्निदेव ने सोचा कि ठीक है मैं जला लेता हूं। तो जलाने का प्रयास तो किया परंतु असफल हो गए। इसका कारण क्या था? कारण था कि इस वन में एक नाग रहा करता था जिसका नाम था तक्षक। ये तक्षक शब्द आपने अवश्य सुना होगा पहले भी, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी चर्चा और करते हैं। तो ये तक्षक नाग जो हैं, इनका थोड़ा परिचय हम देते हैं। वैसे सृष्टि के सृजन के समय ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को और अन्य पुत्रों को भी कहा जो कि उनके शरीर से उत्पन्न हुए थे कि आप सबको प्रजापति बनना है, अर्थात प्रजा की उत्पत्ति आपको करनी है। तो वैसे दक्ष प्रजापति थे, उनके अनेक पुत्रियां थी, उनमें से एक थी कद्रु। कद्रु का विवाह हुआ कश्यप मुनि से और कद्रु देवी से अनेक सांप और बिच्छू आदि की योनियां जो हैं वो उत्पन्न हुई। तो उनमें से प्रमुख जो उनके संतान थे वो थे शेष, वासुकी और तक्षक। और कश्यप मुनि की और एक पत्नी थी जिनका नाम था विनता, और विनता के संतान हुए गरुड़ जी। और गरुड़ जी तो सांपों के शत्रु हैं क्योंकि सांपों को तो खा जाते हैं। खैर, तो तक्षक और गरुड़ आदि के बीच में वैर तो पहले से था, योनियां ही कुछ ऐसी थीं। तो खैर, ये रहे तक्षक। तो अब तक्षक यह इस वन में रहा करते थे, वो इंद्रदेव के घनिष्ठ मित्र थे। तो जब अग्निदेव आके जलाने का प्रयास करते तो उस समय तक्षक इंद्रदेव को पुकारते और इंद्रदेव मूसलधार वर्षा बरसा देते और उससे अग्निदेव अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे हताश होते रहते बार बार। फिर अग्निदेव वापस चले गए ब्रह्मा जी के पास। आपके आदेश अनुसार मैंने जलाने का प्रयास किया, मेरा भोजन तो है, मेरी औषधि है खांडव वन में, परंतु जितनी बार मैं ऐसे करने का प्रयास करता था तो ऐसे इंद्रदेव ने मेरे कार्यों को निष्फल कर दिए, तब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। वैसे अर्जुन और कृष्ण साक्षात नर और नारायण हैं, जो कि पहले बद्रिक आश्रम में प्रकट हुए थे तपस्या करने के लिए। तो अब वो यहां नर और नारायण के रूप में, अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए हैं। तो फिर अग्निदेव ने कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, तो कृपया मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरे रोग को ठीक कीजिए। अब जब कोई अर्जुन के पास इस तरह से आता था तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य था कि वो उसकी इच्छा पूर्ण करें, उनकी रक्षा करें। तो अर्जुन ने कहा कि अवश्य मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, परंतु यद्यपि मेरे पास विभिन्न दिव्य अस्त्र हैं, फिर भी इन अस्त्रों को छोड़ने के लिए मुझे कोई दिव्य धनुष चाहिए, इसके बिना मैं इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। साथ साथ में मुझे एक ऐसे तीरों का झुंड चाहिए जो कि खत्म नहीं होगा कभी, और यदि एक रथ नहीं मिले मुझे जो कि दिव्य घोड़ों के द्वारा खींचा जाए तो मैं चलूंगा कैसे? तो अग्निदेव ने कहा, आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। तो उन्होंने ध्यान में वरुण देव को पुकारा, जो समुद्र के देवता हैं। वरुण देव सामने आए और अग्नि देव ने वरुण देव से निवेदन किया कि मुझे पता है कि आपने समुद्र के नीचे तल पे बहुत सारे दिव्य अस्त्रों को रखा है, तो कृपया आप अर्जुन को यह प्रदान कर दीजिए। तो बड़े प्रसन्नता से वरुण देव ने उन अस्त्रों को प्रदान किया। सबसे पहले तो उन्होंने तरह तरह के अस्त्र दिए, एक धनुष दिया। ये धनुष एक मनुष्य के जैसे ही ऊंचाई में था और इसका नाम था गांडीव। तो अर्जुन गांडीवधारी तब से कहे गए क्योंकि इस समय उनको ये धनुष मिल गया। और अर्जुन ने देखा इस बाण को, बहुत प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित हो गए। रत्नों से सुशोभित था ये, और उसको देखकर ही उसके हाथ में पकड़ के ऐसे अर्जुन अब खड़े थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये इस तरह का धनुष जब ये मेरे हाथ में रहेगा तो हार मेरे लिए असंभव है। फिर उसके तार को लेकर थोड़ा खींच लिया और ऐसे ध्वनि आई कि सारे वन के जो प्राणी थे वो डर के मारे चीखने लगे, केवल उस गांडीव के ध्वनि मात्र से। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, गांडीव बाण को स्वीकार करके, साथ साथ में अनेक धनुष, अनेक तीर भी थे और एक रथ भी आया साथ में, जो कि वास्तव में सोमदेव का था, चंद्रदेव। वरुण देव ने रथ लाके दिया और ये दिव्य घोड़े थे, सफेद रंग के, दूध के समान सफेद। तो अर्जुन अब पूरी तरह से संतुष्ट हुए। साथ साथ में उन्होंने श्री कृष्ण को कौमोदकी नाम का एक गदा प्रस्तुत किया, इसलिए श्री कृष्ण के पास एक गदा आ गया। और ये गदा की विशेषता थी कि ये तो इतनी शक्तिशाली थी ही, परंतु जब इस गदे को घुमाया जाता था तो एक गर्जना होती थी, जिस गर्जना के द्वारा जो शत्रुओं का हृदय टूट जाता था, हौसला भंग हो जाता था। तो इस तरह से अर्जुन को और श्री कृष्ण को अपने अपने अस्त्र ऐसे मिले। वैसे देखिए श्री कृष्ण की ये लीलाएं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के पास अनेक अस्त्र हैं या उनके पास और कोई आभूषण आदि हैं, वो तो नित्य रूप से श्री कृष्ण के पास रहते हैं, परंतु जब वो इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि मानो उनको किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को भेंट, कोई भेंट देता है या कोई युद्ध में जीत कर वो ले आते हैं। जैसे कि पांचजन्य, ये श्री कृष्ण का शंख है, तो ये उनको कैसे मिला? समुद्र से प्राप्त किया उन्होंने, पंचजन्य नाम का एक असुर था, उसका वध करके श्री कृष्ण को ये मिला। यद्यपि श्री कृष्ण का तो ये नित्य रूप से शंख है, ठीक उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण की कौस्तुभ मणि है वो तो नित्य रूप से श्री कृष्ण के पास रहती है, परंतु कृष्ण लीला में ऐसे देखा जाता है कि जब कालिया का दमन किया श्री कृष्ण ने, तो कालिया की पत्नियों ने आके कालिया के खजाने में जितने भी अनमोल रत्न आदि थे वो आके भेंट दिए श्री कृष्ण को, और उनमें से कौस्तुभ मणि भी था, ऐसे आचार्यों ने बतलाया है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण बरहा पीड़म, बरह एक मोर पंख अपने बालों में स्वीकार करते हैं, तो वो कैसे आया श्री कृष्ण के पास? वैसे तो नित्य रूप से है, फिर भी ऐसे ब्रज की लीला में बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण एक मोर के साथ नृत्य करने की प्रतियोगिता में लगे हुए थे तो मोर ने बड़े प्रसन्न होकर अपना पंख जो है वो श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। तो इस तरह से कई कथाएं हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, उनको अपना गदा भी प्राप्त हुआ, और उनके गदा का नाम है कौमोदकी। तो खैर ऐसे जब प्राप्त हुआ तो अर्जुन ने कहा अब मैं पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हूं, अब कोई मेरा सामना नहीं कर पाएगा, तो आपका कार्य शुरू करिए, हम रक्षा करेंगे। तो जैसे ही वो रथ चलने लगा, वो रथ की गड़गड़ाहट सुनकर अर्जुन के रोंगटे फिर से खड़े हो गए और फिर वो घूमते गए तेजी से। अग्निदेव ने कहा था कि ये रथ जो है ये वायु या यहां तक कि मन के गति की तेजी से भी चल सकता है। तो अर्जुन बैठे, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सारथी बनूंगा। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध में रहे, इसके पहले भी हुए। तो अब इस दिव्य रथ के ऊपर दोनों सवार हुए और फिर खांडव वन की परिक्रमा करने लगे, गोल गोल घूमने लगे। और यहां अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू किया और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मान लीजिए कि कोई भगवान का सुदर्शन चक्र ही घूम रहा है, इतनी तेजी से रथ चल रहा था। कृष्ण चला रहे थे रथ को, अर्जुन सवार थे, और जैसे ही कोई पशु प्राणी आदि उसमें से निकल जाने का प्रयत्न करते तो अर्जुन अपने तीर से उसे मार डालते। वैसे ये भी तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा था कि ये भी एक दिव्य योजना है, कोई देवताओं के एक किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब किए जाना वाला है। तो ऐसे चलते रहा चलते रहा। उधर ऐसी आग लग गई खांडव वन में, बड़े जोरों से अग्निदेव जलाए जा रहे थे उस खांडव वन को, कि सब जगह ये रंग बिरंगे जो चिंगारे हैं इस अग्नि के वो आसमान तक पहुंच गए, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया, इंद्रदेव तक खबर पहुंच गई। इंद्रदेव आ गए, सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी पानी बरसाना चाहिए मुझे, तो पानी बरसाना शुरू कर दिया। परंतु गर्मी इतनी थी अग्नि के कारण कि पानी गिरते गिरते भी वाफ बन गया। और इस तरह से और जोरों से इंद्रदेव ने प्रयास किया परंतु असफल हुए। ऐसे जब इंद्रदेव ने देखा कि वर्षा बरसाने के बावजूद यहां अग्निदेव की अग्नि कम नहीं हो रही है, तो वह स्वयं देवताओं को साथ में लेकर आए और भयंकर युद्ध हुआ देवताओं के बीच में और अर्जुन के बीच में। अब श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ में थे और साथ साथ ऐसे दिव्य अस्त्र भी थे, यहां तक कि इंद्रदेव ने अपने वज्रास्त्र का भी प्रयोग किया। परंतु अर्जुन ने एक के बाद एक जितने भी अस्त्र देवतागण छोड़ रहे थे उनका प्रतिकार किया। देवगण सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे युद्ध, भीषण युद्ध चलता गया, समय बीतता गया। उधर श्री कृष्ण अर्जुन को घुमाए ले जा रहे थे पूरे खांडव वन को। अब घुमाते घुमाते हुआ ये कि मय नाम का एक दानव था, मय दानव, इसका नाम आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में भी आता है उनका नाम। तो मय दानव, जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि मय दानव ये भी भाग के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया मय दानव का वध करने के लिए। परंतु बड़े बुद्धिमान थे मय दानव, सीधे अर्जुन के शरण में चले आए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि जब कोई उसके शरण में आता है उसे रक्षा करनी पड़ती है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, इसने मेरी रक्षा ली हुई, मेरा आश्रय लिया हुआ है, कृपया आप इसे मत मारिए। तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। तो उधर युद्ध चलता गया। हम माया दानव के विषय की चर्चा आगे चल के और थोड़ा बहुत करेंगे, परंतु यहां ये युद्ध चलता गया। अंततः इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। 15 दिन लगातार अग्निदेव खांडव वन को जलाते रहे और जैसे जैसे जलाते रहे जितने भी जड़ी बूटियां थीं, जो भी औषधियां थीं, उन सबको निगल के उनका तबीयत ठीक होते जा रहा था, वो भी प्रसन्न हो रहे थे। तो 15 दिन के बाद जब और युद्ध जोरों से चल रहा था तो एक आकाशवाणी आई। वास्तव में ये स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे थे। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, अभी आप लौट जाइए, क्योंकि वैसे ये किसी उच्च उद्देश्य के लिए ही है और वैसे इनके साथ अब युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है। और इंद्रदेव ने बात मान ली। इंद्रदेव वास्तव में बहुत प्रसन्न हुए थे, वो अपने पुत्र अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में अच्छी तरह से सफल हुए अर्जुन। तो इंद्रदेव अग्निदेव के साथ में फिर श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तो आप कहिए क्या वरदान चाहिए आपको, मैं आपको कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए, स्वर्गीय अस्त्र जो आपके पास हैं। तो इंद्रदेव ने कहा मैं अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु अब नहीं, अब समय नहीं आया है उसके लिए। सर्वप्रथम आपको शिवजी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना होगा, इसके लिए शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी होगी, और शिवजी को प्रसन्न करने के बाद उनसे पाशुपत अस्त्र स्वीकार करने के बाद मैं आपको स्वर्गलोक ले जाऊंगा और वहां आपको सारे जो दिव्य अस्त्र हैं वो प्रदान कर दूंगा, स्वयं मैं सिखाऊंगा कि इन अस्त्रों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। आगे चल के जब पांडव वनवास में थे, इंद्रदेव ने ऐसे किया, शिवजी के साथ भी युद्ध हुआ था अर्जुन का। उस समय शिवजी एक शिकारी के वेश में आए थे, अर्जुन तो हार गए, शिवजी को हरा नहीं पाए वैसे, परंतु शिवजी ने अपना असली रूप प्रकट किया, कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, और फिर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इसके बाद में अर्जुन स्वयं इसी देह में स्वर्गलोक गए, वहां थोड़े समय के लिए रहे और फिर आए। तो खैर इंद्रदेव ने इस समय तो कहा कि अब मैं ये अस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता, तो लेकिन बाद में दूंगा। तो श्री कृष्ण से पूछा इंद्र ने कि आपको मैं क्या वरदान दे सकता हूं। तो इंद्रदेव ने श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा वरदान चाहा। उन्होंने चाहा मुझे ये वरदान दीजिए कि अर्जुन के साथ जो मेरी मित्रता है वो सदैव बनी रहे। देखिए भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण, वो तो एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं ना। तो इंद्रदेव देवराज हैं, मनुष्यों को वरदान प्रदान करने वाले हैं, इसलिए श्री कृष्ण को भी वरदान दे रहे थे और श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का सम्मान किया और देखिए कितना सुंदर वरदान मांग लिया। तो इंद्रदेव ने कहा तथास्तु, और एक मैं वरदान आप दोनों को देता हूं, यद्यपि आपने मांगा नहीं है मुझसे, और वो वरदान ये है कि आप दोनों पूर्ण ब्रह्मांड में जहां चाहो वहां भ्रमण कर पाओगे, मेरी शक्ति से कोई बाधा नहीं आएगी आपके भ्रमण में। इस तरह से इंद्र वहां से चले गए। अब उधर हुआ ये था कि खांडव वन में उस समय तक्षक नाग नहीं थे, तक्षक चले गए थे किसी काम से कुरुक्षेत्र, और यहां पे तक्षक की पत्नी और तक्षक के पुत्र जिनका नाम था अश्वसेन वो वहां पर थे। तो जैसे ही आग लगी और तक्षक की पत्नी और तक्षक के पुत्र दोनों निकल रहे थे, भागे जा रहे थे उस वन से, कि अर्जुन ने देखा और तीर छोड़ दी, तक्षक की पत्नी की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, और उधर अश्वसेन को भी वो मारने जा रहे थे जो कि तक्षक के पुत्र थे, परंतु इंद्रदेव ने देखा और इंद्रदेव ने अचानक ऐसे एक तूफान निर्माण कर दिया जिससे कि अर्जुन थोड़े क्षणों के लिए बेहोश होकर ही गिर पड़े। उस समय का फायदा उठाकर अश्वसेन वहां से निकल पड़े और अश्वसेन ने वायदा किया कि मैं इसका बदला लूंगा। अब आगे चल के हुआ ये कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो अश्वसेन ने बदला लेने का इच्छा जो अभी पूर्ण करने का मौका देखा, जब कर्ण का युद्ध अर्जुन के साथ हो रहा था तो अश्वसेन ने प्रवेश किया कर्ण के अस्त्रों में एक तीर के समान आए और कर्ण ने फिर तीर समझकर छोड़ दिया और वह सीधे अर्जुन की ओर आ रहे थे। अर्जुन की हत्या होनी ही वाली थी परंतु अर्जुन के सारथी जो थे जिनका नाम था श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को तो तुरंत पता चल गया कि ये तो वास्तव में तक्षक पुत्र अश्वसेन हैं। उनको याद आया कि अश्वसेन तो निकल गए थे, भाग गए थे, अर्जुन उनको मारे नहीं थे उस समय खांडव वन में, अब यही वही अश्वसेन है। तो उस समय श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों को थोड़ी जोर से रथ के ऊपर दबा दिया। अब उस बल के कारण, उस प्रभाव के कारण जो घोड़े हैं उस बल को सहन नहीं कर पाए, वो अपने घुटनों तक आ गए नीचे, गिर पड़े घोड़े, अपने घुटनों में आ गए और घुटनों में आ गए तो रथ नीचे आ गया थोड़ा सा, और नीचे आया तो अर्जुन रथ के ऊपर सवार थे, अर्जुन भी नीचे आ गए और जो वो तीर था जो कि वास्तव में अश्वसेन था वो सीधे अर्जुन के मुकुट के आपके लग गया। इस तरह से अर्जुन बच गए और वो मुकुट चूर चूर हो गया, परंतु अर्जुन बच गए श्री कृष्ण की योजना से। फिर अश्वसेन का प्रयास असफल रहा। तो खैर, उधर तक्षक ये सोच रहे थे कि मैं जब था नहीं ये सब हो गया, अब मुझे भी बदला लेना चाहिए, और आगे चल के तक्षक ने बदला अवश्य लिया अर्जुन के वंशजों के ऊपर। अब आप सबको तो पता है कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि राजा परीक्षित को श्राप मिला था, शमिक ऋषि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी, यद्यपि वो एक 12 वर्ष के बालक थे फिर भी उनमें ऐसे ब्रह्म तेज था, ऐसी शक्ति थी कि वो विश्व सम्राट और शुद्ध भक्त राजा परीक्षित को श्राप देने में समर्थ थे। वैसे तो राजा परीक्षित प्रतिकार कर सकते थे इस श्राप का, परंतु भगवान की इच्छा समझकर उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया इस श्राप का, न पुनः उन्होंने श्राप दिया उस बालक को, और फिर वो निकल पड़े गंगा के तट पर। आके वहां 7 दिन शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी। अब श्रृंगी ऋषि का श्राप ये था कि 7 दिन में, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको आके डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज निडर होकर आए, कृष्ण कथा कर रहे थे और उन्होंने भी सांत्वना दी ऋषि मुनियों को कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं तक्षक नाग या जो भी कोई हो मैं भी किसी से भी डरता नहीं हूं, मैं अभी मृत्यु के संबंध में निडर हो चुका हूं। तो शुकदेव गोस्वामी अंत में भी उनको पूछते हैं कि हे राजन, अभी आपकी कोई इच्छा है मृत्यु का सामना करने के लिए, आप तैयार हो? तो शुकदेव तो परीक्षित महाराज ने कहा, आपकी कृपा से अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, चाहे तक्षक नाग आए, कोई काला जादू करे, कुछ करे, कोई बात नहीं, अब हम बिल्कुल निडर हैं, मृत्यु का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर श्री कृष्ण के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके ध्यान में मग्न रहे राजा परीक्षित। उधर वही तक्षक नाग जिसके पत्नी का की हत्या अर्जुन ने की थी खांडव वन में और जिनका पुत्र जो है वो भाग निकला था, वही तक्षक जो कि उस स्थान में रहा करता था क्योंकि कुरुक्षेत्र के पास में ही रहने का स्थान था, तो वो वहां चले आया। आते आते उसने देखा कि एक ब्राह्मण है, कश्यप वंशी ब्राह्मण, कद्रु के पति कश्यप मुनि नहीं, ये दूसरे कश्यप थे, तो वो आ रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण आ रहे हैं और इस ब्राह्मण के पास ऐसी विद्या है जिससे कि सांप के सबसे खतरनाक विष का प्रतिकार भी वो कर सकते हैं, उनके पास वो औषधि है, ऐसे बताया जाता है कि औषधियों से और मंत्रों से सांपों के प्रभाव को मुक्त किया जा सकता है। अभी हमने तो ये केवल पढ़ा था, प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जगह जगह बताया जाता है मंत्रों के द्वारा औषधियों के द्वारा सांपों को वश में किया जा सकता है, या सांप किसी को डस लेता है तो उस व्यक्ति को विष मुक्त भी किया जा सकता है। एक बार हम एक गांव में गए थे, यहां उत्तर प्रदेश में ही, तो उस गांव में हम एक हनुमान जी के मंदिर में रहे थे, वहां प्रचार कर रहे थे गांव के लोगों के लिए। हम 6-8 महीने में साल में एक बार जाते हैं वहां पर। तो वहां एक व्यक्ति है उस गांव में जो तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करके इन लोगों को ठीक कर लेता है कि जिनको सांप डस लेता है। और क्योंकि ये लोग खेती करते हैं तो खास करके जब फसल काटने का समय होता है तो उस समय खेत में बहुत सारे सांप बिच्छू आदि होते हैं। तो हमने अपनी आंखों से देखा, रात को सो नहीं पाए 2-3 दिन, क्योंकि एक न दो कोई ऐसे व्यक्ति आते ही रहते थे चीखते चीखते दर्द के मारे। और ये व्यक्ति कुछ करता और तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करता, कुछ कुछ और कर लेता, और वो व्यक्ति चलता फिरता वापस चले जाता। तो आश्चर्यचकित हो गए। तो हमने उनसे पूछा, किसी दूसरे गांव वाला था तो उससे पूछा, भाई कोई डॉक्टर वगैरह है यहां? बोले ये तो डॉक्टर की पत्नी है, डॉक्टर लेकर आए हैं उनको। तो खैर, तो सोचा ऐसे भी होता है। अब उन्होंने उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, मुझे जानना चाहता था कि भाई क्या बोलते हो आप, क्या मंत्र बोलते हो। खैर उन्होंने पूर्ण बताया तो नहीं, परंतु कोई भक्ति के मंत्र तो थे नहीं, कोई चंडी काली को प्रसन्न करने वाले मंत्र थे। खैर सांप का विष का प्रभाव तो निकल रहा था। फिर उन्होंने कहा, उस समय अचानक मोबाइल फोन में कोई घंटी बजी, कोई बिहार से व्यक्ति था जिनको सांप ने डस लिया था, यह हम मोबाइल फोन पे मंत्र बोल के उनको ठीक कर रहे थे वो। अब वो ठीक हुए या नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम एक महिला को तो हमने देखा अपनी आंखों से। वो इतनी चिल्लाते हुई आई वहां पर, इतनी जोर से रो रही थी क्योंकि बिच्छू ने काटा था या कुछ जो भी हुआ होगा। 10 मिनट में वो अपने पैरों पे खड़े होकर चल पड़ी, उनको बिस्तर पे लाना पड़ा था। इन्होंने सोचा था कि ये बस अभी मरने वाली है। तो खैर ऐसी विद्याएं भी होती हैं। और पुराने जमाने में ब्राह्मण जो थे ऐसे मंत्रोच्चारण आदि में बहुत निपुण हुआ करते थे। तो ये कश्यप मुनि ऐसे ब्राह्मण थे, उनको पता था, परंतु थोड़े लोभी थे, धन की आशा लेकर यहां आए थे। उनको पता था कि ऐसे श्राप है कि एक नाग तक्षक नाग आएगा डस लेगा, तो उनकी आशा थी कि मैं परीक्षित महाराज की जान बचाऊंगा और ऐसे वो मुझे पुरस्कार देंगे, बहुत धन देंगे, तो मैं धनी हो जाऊंगा। तो इस उद्देश्य से ये कश्यप मुनि आ रहे थे। तो तक्षक नाग ने देखा कि अरे सब कुछ मेरी योजनाएं भंग हो जाएंगी अब ये आए तो वह वैसे तो वेश बदल के वो आए थे। तो उन्होंने सोचा कि कश्यप मुनि की परीक्षा अब मुझे लेनी चाहिए। तो अपना रूप उन्होंने असली रूप प्रकट कराया और फिर वहां एक वृक्ष था, उस वृक्ष को उन्होंने डस लिया और वो वृक्ष वहीं के वहीं जो है चूर होकर गिर पड़ा। बस उसी क्षण, तो कोई कहते अश्वत्थ वृक्ष है, कोई कहते हैं कोई दूसरा वृक्ष, खैर जो भी हो, तो उस ब्राह्मण ने, कश्यप मुनि ने तुरंत मंत्रों के उच्चारण करके उस वृक्ष को पुनः जीवित कर दिया और मिनटों में वृक्ष तैयार हो गया। अब ये तक्षक तो हैरान हो गए देखकर कि ऐसी विद्या, ऐसी कला, ऐसी शक्ति वो तो रही, लेकिन फिर अब मुझे जो कार्य करना है उसमें क्या होगा। फिर तो उन्होंने जान लिया कि इस ब्राह्मण को धन चाहिए, तो उन्होंने खूब धन दे दिया उस ब्राह्मण को, कहा कि अब आप यहां से मत जाइए, आजकल की भाषा में कहेंगे कि घूस दे दिया। तो ऐसे बहुत सारा धन दे दिया कि अब आप रहो, अब यहां नहीं रहो, आप चले जाओ। तो बहुत सारा धन तो मिल गया, वो चले गए और परीक्षित महाराज वहां अकेले बैठे थे। और वैसे किंवदंती है कि क्योंकि इतनी रक्षा हो रही थी परीक्षित महाराज की, तो तक्षक ने अपना रूप बदल लिया, एक कीड़े के रूप में आए, कीड़े के रूप में आए और फल में प्रवेश किया उन्होंने। और जब परीक्षित महाराज के पास ये फल आदि आ गया तो उसमें से बाहर निकले, अपना असली रूप प्रकट किया और दस दिया परीक्षित महाराज को, और उसी क्षण परीक्षित महाराज का शरीर जो है वो भस्म हो गया, जल गया सारा शरीर। तो खैर ये भगवान की योजना थी। तो देखिए कितना गहरा संबंध है, बार बार हम ये देख रहे हैं श्रीमद् भागवत और महाभारत में समय समय पर गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। तो खैर ये थोड़ा सा विषय से हम हट के बात कर रहे थे, विषय से संबंधित भी था। फिर से आए हम खांडव वन में। तो वैसे जब तक्षक की बात हो रही है तो आगे भी थोड़ी दो बातें तक्षक के बारे में कहें कि आगे चल के जब जन्मेजय राजा वहां महाभारत कह रहे थे, वैशंपायन, क्षमा कीजिए, वैशंपायन जन्मेजय राजा को महाभारत सुना रहे थे। जन्मेजय राजा तो परीक्षित महाराज के पुत्र थे, तो परीक्षित महाराज ने जन्मेजय राजा को अपने राजगद्दी पर बिठाकर वो फिर आए थे। अब परीक्षित महाराज की मृत्यु के बारे में उनके पुत्र को बहुत जिज्ञासा थी। जब पता चला कि तक्षक के कारण ऐसे हुआ है तो जन्मेजय राजा को बड़ा क्रोध आया। इसके पीछे वास्तव महाभारत में काफी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इस समय कहना ये उचित नहीं रहेगा क्योंकि कहानी काफी लंबी है, पूरा इतिहास है। खैर इतना कहना पर्याप्त होगा इस समय कि क्रोध के कारण जन्मेजय राजा ने एक सर्प यज्ञ आयोजित किया। बड़े बड़े ब्राह्मण वहां पर आए थे और मंत्रों का उच्चारण करने से जितने भी दुनिया के सांप थे वो सब आहुति के रूप में आके उस अग्नि में आके जल जाते। और फिर एक बार जन्मेजय राजा ने पूछा कि तक्षक ना क्यों नहीं आ रहा है इसमें, तक्षक का नाम तो ले रहे हो आप। तो ब्राह्मणों ने कहा क्योंकि तक्षक अब इंद्रदेव के पास में है, इंद्रदेव की रक्षा है उनकी, इसलिए वो भी नहीं आ रहे हैं यहां पर। तो परीक्षित राजा ने कहा तो फिर क्यों ना तक्षक के साथ साथ इंद्रदेव को भी बुलाया जाए, उनको भी अग्नि में आहुति के रूप में अर्पण किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने भी ऐसे जबरदस्त मंत्रों का उच्चारण किया कि इंद्रदेव तक्षक को लेकर अपने वाहन में घूम रहे थे, वहां से गिर पड़े। और गिर पड़े, वैसे महाभारत में थोड़े अन्य जगहों में और भागवत में भी थोड़ा सा अंतर है वर्णन में। खैर महाभारत में वर्णन है कि गिरते गिरते इंद्रदेव ने तक्षक को त्याग दिया, अपनी जान बचाए पहले उन्होंने त्याग दिया। परंतु उस समय आस्तिक नाम के एक बाल ब्राह्मण थे जिनकी माता नाग थी और पति ब्राह्मण, पिता एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने आके निवेदन किया राजा जन्मेजय से कि आप तक्षक की रक्षा कीजिए। तो जन्मेजय राजा मान गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि बृहस्पति आए थे, ऐसा जब इंद्रदेव की दशा को देखी बृहस्पति ने तो उनके कुल गुरु बृहस्पति यहां आए और उन्होंने जन्मेजय राजा से निवेदन किया कि देखो तक्षक राजा ने देवताओं के अमृत का पान किया है, तो इस प्रकार से अकाल मृत्यु होना इनका ठीक नहीं है। जिन्होंने स्वर्गलोक के अमृत का पान किया है उनकी मृत्यु आदि किसी विशेष ढंग से होती है, ऐसे होना ठीक नहीं है। तो खैर जन्मेजय राजा मान गए और तक्षक की जान बच गई। और फिर तक्षक को तो बहिष्कृत कर दिया वहां से और तक्षक चले गए और तक्षशिला नाम के स्थान में उन्होंने अपने राजधानी को स्थापित किया, वहां पर रहे वो। तक्षशिला ये आज पाकिस्तान में है और आपको आपके पाठशाला के इतिहास के इतिहास से आपको याद होगा कि नालंदा और तक्षशिला ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे 1-2 हजार वर्ष पूर्व, तो वही तक्षशिला है। तो खैर वहां से भी वो निकले, फिर ऐसे बहुत कुछ हुआ, लेकिन तक्षक अंततः आए राजा परीक्षित के समय। उन्होंने राजा परीक्षित की मृत्यु में वो कारण बन गए। और इधर अर्जुन और श्री कृष्ण खांडव वन में थे तो मय असुर उनके पास आ गए, मय दानव कि अर्जुन के पास आए, आपने मेरी जान बचाई, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, इसलिए आप कोई वरदान मांगे मुझसे, आप क्या आदेश देना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने जो भी किया वो मेरा कर्तव्य था, इसलिए इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी जब बहुत आग्रह करने लगे मया दानव, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए तो श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, तो यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करो, श्री कृष्ण को पूछिए कि उनको क्या चाहिए और उनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो मया दानव श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अभी मैं आपको मेरी इच्छा व्यक्त करता हूं कि पांडवों के लिए एक ऐसे अद्भुत विशाल और चमत्कारी सभागृह बनाइए जिसको देखकर देवलोक के निवासी भी चकाचौंध रह जाएं। तो फिर मया दानव ने बात मान ली, मया दानव ने कहा कि ऐसे ही हम करेंगे। अब वृषपर्व नाम के एक दानवों के राजा हुआ करते थे, एक बार उन्होंने कुछ विशाल यज्ञ आदि संपन्न करना चाहा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था जो कि मैणक पर्वत के पास उन्होंने रखा था, उस समय से अभी भी है वहां, तो ढेर सारे रत्नों के पहाड़ पड़े हैं, तो मैं वो लेकर आऊंगा। तो वहां पर चले गए और इस धन की रक्षा अनेक यक्ष और राक्षस कर रहे थे, तो उनकी अनुमति से मय दानव ये सारा धन लेकर आए। और जब लेकर आए तो वहां पे साथ साथ में एक गदा भी था, वो एक गदा हजार गदाओं के तरह शक्तिशाली था, तो उस गदे को मय दानव ने भीमसेन को भेंट दे दी। तो भीमसेन जिस गदे का प्रयोग करते थे वो मय दानव ने उनको दिया हुआ था। और साथ साथ में वहां पे मैणक पर्वत के पास में जो सरोवर था उसके नीचे पानी जल में भीतर एक शंख था जिसका नाम था देवदत्त, जिसको बजाने से शत्रुओं का हौसला टूट जाता था। तो ये शंख भी मय दानव ने ले आके अर्जुन को भेंट किया, साथ साथ जितने भी हीरे मोती रत्न आदि सब थे वो लेकर आए और निर्माण कार्य शुरू किया। और थोड़ी ही देर में, कई महीने लग गए, 13-14 महीने लग गए लगभग, उस दौरान श्री कृष्ण तो वापस चले गए थे द्वारका अनुमति लेकर युधिष्ठिर महाराज से। यद्यपि पांडव श्री कृष्ण को अनुमति नहीं देना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण काफी समय से द्वारका से दूर रहे थे, अब कोई दूसरा उपाय नहीं था, उनको जाना था वापस, तो श्री कृष्ण वापस चले गए। जब निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो बड़े धूमधाम से विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा वास्तु शांति, गृह प्रवेश, जो भी सारे विधियां होती हैं वो सब संपन्न की गई और सभागृह खोला गया। और ऐसे चमत्कार का सभागृह था कि इसका वर्णन करना भी संभव नहीं है, ऐसे लगता था कि मानो ये स्वर्गलोक के समान है, स्वर्गलोक से भी बढ़कर यहां का ऐश्वर्य है। वैसे इसके संबंध में एक छोटी सी घटना आपको सुनाना चाहेंगे, जो वैसे क्रम के अनुसार तो अब नहीं हुआ, काफी बाद में हुआ, फिर भी जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों के पास एक ऐसे चमत्कारी भवन है, सभागृह है, तो दुर्योधन के हृदय के जलन की कोई सीमा नहीं रही। तो उस भवन में प्रवेश कर दिया। जैसे ही प्रवेश किया तो आश्चर्यचकित हो गए दुर्योधन देखकर कि ऐसा ऐश्वर्य। परंतु बाहर से उन्होंने ऐसे कोई आश्चर्य की भावना को व्यक्त होने नहीं दिया। ऐसे चलते गए कि मानो ठीक है, साधारण घर है, कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे चल रहे थे लेकिन अपने मन ही मन में चमत्कार कर रहे थे, ऐसा भवन और वो भी पांडवों को मिला। वैसे जलन जो होती है ना दूसरों के प्रति, ये बहुत खतरनाक होती है, ईर्ष्या या द्वेष। भारत में जब हम राजमार्गों में चलते हैं तो जो ट्रकों को पीछे तरह तरह की चीजें होती है ना लिखी हुई होती है, जैसे कि बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, मेरा भारत महान, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है। तो एक बार हमने पढ़ा था, एक जगह लिखा था, जलना है तो दीपक की तरह जलो। हमने सोचा कितनी सुंदर बात कही है, जलना ही है तो दीपक की तरह जलो, क्योंकि जब दीपक जलता है तो दूसरों का लाभ होता है, रोशनी मिलती है और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, मार्गदर्शन मिलता है लोगों को, भय चले जाता है। उसी प्रकार से यदि हमें भी दीपक की तरह जलना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान भी देना चाहिए। ज्ञान के द्वारा प्रज्ञान का प्रकाश सब जगह आ जाएगा, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा, प्रेम आश्रय मिल जाएगा सारे समाज में। परंतु यदि ईर्ष्या आदि हमारे हृदय में होगी तो जिनके प्रति हम ईर्ष्या करते हैं उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो हमारा ही होगा। और दुर्योधन के हृदय में ये ईर्ष्या एक प्रज्वलित अग्नि के समान तीव्रता से जल रही थी, और यही अग्नि है वास्तव में जिसने कि सारे कुरुवंश को जला डाला, नाश कर दिया। ये केवल सेना के कारण नहीं हुआ, केवल युद्ध के कारण नहीं हुआ, मूल कारण इसका है ईर्ष्या और जलन। तो खैर, दुर्योधन वहां पर आए और सब जगह देख रहे थे, तरह तरह के रत्नों से सुशोभित खंभे और ऐसे सजाया हुआ था इस सभागृह को कि विश्वास नहीं कर पाए दुर्योधन। तरह तरह के पक्षियां और सजावट। और जब चलते जा रहे थे तो जमीन जो है, जमीन की तरह ही लगने वाले और एक भाग था, वास्तव वो पानी था, परंतु समझ में नहीं आता था कि वो पानी है। तो दुर्योधन वहां चले, पता नहीं चला कि ये पानी है, सोचा कि ये जमीन ही है और सीधे पानी में गिर पड़े। जब अचानक पानी में गिर पड़े तो हाथ पैर इधर उधर हो गए। उस समय श्री कृष्ण द्वारका से वापस आ चुके थे यहां पर, क्योंकि राजसूय यज्ञ की तैयारी अब युधिष्ठिर महाराज को करनी थी, चर्चा आदि करनी थी। तो पांडवगण पहले मंजिल पे खड़े थे, पांडवों की रानियां भी वहां पर खड़ी थीं, द्वारका की रानियां भी खड़ी थीं, सब हंसने लगे जोर से दुर्योधन की दशा को देखकर। युधिष्ठिर महाराज को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इशारा किया सबसे, नहीं नहीं ऐसे हंसना नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा इशारा नहीं किया, श्री कृष्ण हंसे परंतु किसी से कहा नहीं कि हंसो नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की योजना थी जितना दुर्योधन क्रोधित हो जाए, जितना दुर्योधन के हृदय में क्रोध और ईर्ष्या आदि बढ़ जाए, उतनी जल्दी ही जिस उद्देश्य के लिए श्री कृष्ण यहां प्रकट हुए थे वो पूर्ण हो जाने वाली थी। यदि दुर्योधन अचानक अच्छा आदमी बन जाता या दुर्योधन के मन में कृपा भावना उत्पन्न हो जाती तो भी सब गड़बड़ हो जाता ना। भगवान जिस योजना को पूर्ण करने आए थे वो अपूर्ण रह जाता। आखिर जितने भी भारी वजन था पृथ्वी माता के ऊपर, उसे कम करना था। पृथ्वी माता तो गई थी ब्रह्मा जी के पास, त्राहि त्राहि मुझे बचाइए, अब क्षत्रिय इतने पापी हो गए हैं, उनका बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया है। तो श्री कृष्ण चाहते थे विनाशाय च दुष्कृताम, जो पृथ्वी का बोझ है वो कम हो जाए, हल्का हो जाए। तो इसलिए श्री कृष्ण कुछ कहा नहीं, देखते रह गए। और एक बार जब नए वस्त्र मिले फिर दुर्योधन को, और आगे चल रहे थे, उन्होंने सोचा कि यहां पानी है, और फिर अपनी धोती ऊपर कर ली और आगे चल रहे थे, वहां जमीन था, तो और लोग हंसने लग गए। तो ऐसे माया का चमत्कार इस सभागृह में था। और इस समय जब श्री कृष्ण थे द्वारका में निर्माण कार्य के बाद, तो उस समय नारद जी वहां पर आए युधिष्ठिर महाराज के सभागृह में। नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए इस सभागृह को देखकर। तो नारद जी ने कई अच्छे अच्छे उपदेश दिए, और युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से निवेदन किया कि ब्रह्मांड में जितने भी सभागृह हैं, यमराज के, इंद्रदेव के आदि, उन सबका वर्णन करें। तो नारद जी ने वर्णन किया, अंत में यह भी बताया कि आपके पिता पांडु जी से हम यमलोक में मिले थे, और उनकी इच्छा है, उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न कीजिए। साथ साथ में और जो है राजागण, वो तो अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रलोक गए हैं, स्वर्गलोक गए हैं, तो राजा पांडु भी चाहते हैं कि आप दोनों स्वर्गलोक चले जाएं, इसलिए अश्वमेध यज्ञ संपन्न कीजिए। पांडु महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि देवताओं की योजना है कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए जितने भी दूसरे राजाएं हैं उनको वश में कर लेना चाहिए। जब तक सारे राजाएं विश्व सम्राट के अधीन नहीं होते हैं, तब तक वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता है। तो ये भगवान की योजना थी, देवताओं की योजना थी, पांडु महाराज अच्छी तरह से इसे जानते थे, इसलिए नारद जी के द्वारा उन्होंने ये संदेश भिजवाया। और स्वयं नारद जी ने भी सलाह दी युधिष्ठिर महाराज को कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न कीजिए। और ऐसा महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लेना था, तो क्या युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के सलाह के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ले सकते थे? संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी, आप तो द्वारका जा ही रहे हैं, तो कृपया श्री कृष्ण को संदेश दे दीजिए कि वो यहां आने की कृपा करें। और इस तरह से आगे चल के राजसूय यज्ञ कैसे हुआ, उसके लिए और पहले क्या करना पड़ा, जरासंध का वध कैसे हुआ, और फिर राजसूय यज्ञ में कौन सी घटनाएं हुई, वो एक बहुत बड़ा विषय है। इन सब में श्री कृष्ण की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही, परंतु हमारे चार दिवसीय कथा का अंत यहीं पर हो रहा है, इसलिए राजसूय से संबंधित कथाओं को वर्णन अब हम नहीं करेंगे। हो सकता है कोई और भक्त जब ऐसी कथाएं करें तो वर्णन कर लेंगे। तो हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतने बड़ी संख्या में आके बड़े श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, शांति पूर्वक इस कथा को सुना। तो वैसे हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण महाभारत के मूल पात्र हैं, व्यक्ति हैं, कितना महत्वपूर्ण उनकी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका श्री कृष्ण की है। और वैसे इस दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत में कितनी भक्ति की बातें हैं। भक्ति के दृष्टि से यदि हम महाभारत को देखें तो हमारे लिए ये भक्ति का ही एक ग्रंथ हो जाएगा, परंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष के दृष्टिकोण से इस ग्रंथ को देखेंगे तो फिर बस हमें भक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस सारे ग्रंथों का एक ब्रह्मांड जो है प्रभुपाद जी ने खुलासा करके हमारे लिए रख दिया है, और इन अनमोल रत्नों के खजाने में से हम एक एक रत्न लेके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2-3 मिनट बचे हैं, यदि 1-2 प्रश्न कोई किसी के हों तो आप पूछ सकते हैं, उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे, फिर अगला कार्यक्रम शुरू होना है यहाँ पर। सुभद्रा जी की बाल लीला के बारे में अधिक वर्णन तो है नहीं, किनकी बेटी है वो तो वसुदेव की बेटी है, श्री वसुदेव, वसुदेव की पुत्री हैं, श्री कृष्ण की बहन हैं, श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन हैं। एक और प्रश्न किसी का? हाँ जी, प्रश्न ये है कि जब महाभारत ग्रंथ को लिखने में गणेश जी की भूमिका है तो उनको हम क्यों नहीं मानते इस कौन में? अवश्य मानते हैं, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी स्वयं मानते हैं, परंतु उनको परम भगवान, परम सत्य भगवान कह के नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो देवता हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो परम सत्य नहीं है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कार्तिक मास की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।